तो जिंक की अहमियत के बारे में, तो सबसे पहले यही कि जिंक की अहमियत के बारे में हम क्यों जाने हैं, इसकी क्या अहमियत है,
अच्छा देखिए, हमारे पास
इम्पोर्टेंस?
अगर हम न्यूट्रिएंट्स को कैटेगराइज करें तो वो दो तरह से आते हैं, एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में देखें तो वो विटामिन्स आ जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आ जाते हैं जैसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं और उनमें जिंक एक है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट है जो कि आयरन के बाद सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, और
अच्छा,
तकरीबन हमारी पूरी बॉडी के अंदर 2 से लेकर 4 ग्राम तक जिंक जो है मुख्तलिफ हिस्से में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें ज़्यादातर ब्रेन है, मसल्स हैं, लिवर, किडनी, आइज़ और प्रोस्टेट ग्लैंड, इन तमाम में ये मुख्तलिफ तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमारा अगर निज़ाम देखें तो उसमें तकरीबन 200 से लेकर 300 इन्जाइम्स जो हैं वो जिंक बेस्ड हैं। तो
अच्छा
जिंक जो है हर तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी से लेके डेवलपमेंट तक, फिर कुव्वते मुदाफ़त का बनना, रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं उनसे बचने के लिए,
जी,
ब्रेन ग्रोथ के लिए, जो है आपकी प्रॉपर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए एलिमेंट की बहुत ज़रूरत है।
तो यानी इसका मतलब ये कि अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो सामना करना
जी
पड़ेगा।
मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ,
जी
इन्जाइम की ही देती हूँ, कि जिसमें मैंने बताया कि 200 से 300 तक इन्जाइम जो हैं बॉडी में वो जिंक के ऊपर बेस करते हैं। और एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इन्जाइम की। इस इन्जाइम का क्या होता है, ये हमारे जिसम में कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है उसको बैलेंस करता है।
अच्छा
अगर ये इन्जाइम जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट में, और यही इन्जाइम लंग के अंदर बाइकार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है,
अच्छा
और अगर जिंक नहीं है तो ये प्रोसेस 1 मिलियन टाइम्स स्लो हो जाता है,
1 मिलियन टाइम्स।
1 मिलियन टाइम्स स्लो हो जाता है। तो यहाँ से देखें कि जिंक कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ब्रेन में देखें तो ब्रेन में जितने भी इम्पल्सेस हैं, ब्रेन हेमोस्टेसिस जो एक बैलेंस है वो
जी
जिंक मेंटेन करता है अपने एंजाइमेटिक मैकेनिज्म से, और अगर जिंक डिसरेगुलेट हो जाए तो वो फिर मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट करता है, और उससे क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, कॉग्निशन के लिए और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जिंक का होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसी तरह अगर आप इम्यूनिटी के अंदर देखें तो बहुत सी हमारी जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो
जो
है
कुव्वत
बीमारियों से
मुदाफ़त,
जो है कुव्वत मुदाफ़त जो है उसके लिए हमारे मतलब हंड्रेड्स ऑफ एंजाइम्स हैं जिसके अंदर जिंक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर अब देखें कि अब सोर्स इसका देखें तो कहाँ से
जी
हमें मिलेगा, तो आप हमें इसकी इसकी चूंकि मैंने आपको बताया है कि सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट है ये, जो कि हमारी दुनिया में बहुत
जी
अबंडेंट है और बहुत चीज़ों में आसानी से अवेलेबल है, जैसे कि मीट है, डेयरी
अच्छा
प्रोडक्ट्स हैं, अंडे हैं, शेलफिश है, मछली है, फिर इसके बाद नट्स आ जाते हैं, नट्स में गंदम
जिंक
के
होता है।
अंदर है,
अच्छा
फिर आपकी नट्स में जो कद्दू के बीज हैं, सनफ्लावर सीड हैं, तो वैरायटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स जो हैं, आजकल मौसम भी है, सर्दी है, तो
जी
ड्राई फ्रूट्स इज़ अ बिग सोर्स ऑफ जिंक,
जी
तो ये
जी
लिया जा सकता है। सिर्फ इसका एक है, इसकी फूड इंट्रैक्शन है, अगर आप सब्जियां बहुत ज़्यादा खाते हैं तो सब्जियों में एक फाइबर है या एक एलिमेंट है जिसे फाइट्स कहते हैं,
अच्छा
फाइट्स जो हैं जिंक के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है।
अच्छा यानी जो लोग सब्जी ज़्यादा खाते हैं उन्हें क्या, उनका
हाँ,
जिंक जो है
कम
कम।
एब्जॉर्ब होता है फूड से,
अच्छा
तो उसमें फिर उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ यही है कि आप जिंक की तादाद अमाउंट ज़्यादा कर लीजिए, यानी जिंक रिच फूड ज़्यादा खाना शुरू कर दें।
अच्छा
तो अमूमन आम तौर पर जो है इसकी कमी नहीं देखी जाती है, लेकिन ग्लोबली WHO के सर्वे के मुताबिक तकरीबन 17% जो है
जी,
डिफिशेंसी रिपोर्टेड हुई है।
17% तो बहुत होता है।
हाँ जी, 17% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन में डेफिशिएंसी रिपोर्टेड हुई है, और उसका बड़ा रीज़न जो है वो मैल न्यूट्रिशन से उसको किया गया है कि मे बी बिल्कुल मैल न्यूट्रिशन की वजह से हो।
जी आपने एक बात के ऊपर इशारा किया था डॉक्टर साहबा, कि जिंक की कमी हो जाती है तो यानी मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ जो है हमें अजियतें हो सकती हैं। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगी, क्या उसकी ज़्यादती से भी नुकसान हो सकते हैं?
देखिए, बैलेंस तो हर चीज़ की ज़रूरी है, ज़्यादती का अभी तक कोई भी सवेर केस जो है वो रिपोर्टेड नहीं हुआ, लेकिन माल न्यूट्रिशन का रिपोर्टेड है, जैसे कि इसकी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसे एक्रो डर्माटाइटिस एंटीरोपैथिका कहते हैं। उसके अलामत ऐसे हैं कि वो बचपन से ही जो है वो उसकी आंतड़ियाँ इस काबिल नहीं होती हैं कि वो जिंक को फूड से एब्जॉर्ब कर सकें, जज़ब कर सकें। और उसकी कमी से क्या होता है, होंठ, उंगलियां और जितने जिस्म के मुख्तलिफ स्किन जहाँ से ज़्यादा एक्सपोज है वो वहाँ से फटना शुरू हो जाती है, डर्माटाइटिस शुरू हो जाता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं जिसे एलोपीशिया कहते हैं, फिर इम्यूनिटी कुव्वत
कम हो
मुदाफ़त
जाती
कम
है।
हो जाती है, फिर वेट गेन जो है ओबेसिटी जिसे मोटापा वगैरह जो है उसके चांसेस हो जाते
अच्छा,
हैं,
बढ़ जाता है
बढ़
मोटापा।
जाते हैं। और फिर साथ में अगर देखें तो उनको बहुत बार जो है इन्फेक्शन होते हैं, ख़ास तौर पे सांस के इन्फेक्शन होते हैं, और इसकी अलामत बहुत ज़्यादा सवेयर हो जाती हैं। फिर कहीं जाके पेशेंट को, बच्चे को इमरजेंसी में लेके जाते हैं, पता चलता है कि इसे जो है जिंक की डिफिशेंसी जेनेटिकली है।
यानी
ऐसे
इनके खानदान दर खानदान आती रही है इनके।
उनको नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पेरेंट को है तो आगे शिफ्ट भी हो जाए, तो ये समथिंग जो कि म्यूटेशन की वजह से है। इसके रिस्क, ये रेयर है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कॉमन नहीं है, ये रेयर है लेकिन एग्जिस्ट करती है। और उसके नतीजे में फिर जो उसका इलाज है वो यही है कि लाइफ लॉन्ग आपको जिंक सप्लीमेंटेशन लेनी पड़ती है, तो वो बुनियादी उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती प्रॉपर तरीके से, आंतड़ियाँ अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही होती हैं। तो ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि हम देखते हैं कि इससे है। अदरवाइज हमारी बॉडी
जी
कुदरती तौर पर जिंक को हैंडल करने के लिए बहुत तैयार है, एफिशिएंट है,
अच्छा
तो ज़्यादती की सिचुएशन जो है वो
नहीं होती है।
रेयर है।
अच्छा,
जी
यहाँ पे आपने एक चीज़ पे दिया, वो चीज़ मैंने कहा कि ये है कि बाल के ऊपर आपने कहा कि बाल गिरने लगते हैं, तो देखा गया है कि मसलन जब बाल थोड़े से लोगों के कम हो जाते हैं या गिरने लगते हैं तो जिंक सप्लीमेंट्स देता हूँ, तो क्या उसी की वजह से होता है?
जी बिल्कुल। जिंक जो है मैंने आपको बताया 200 से 300 एंजाइम्स के ऊपर है,
हाँ
और जिंक इज़ एक्सीलेंट, बेहतरीन चीज़ है बालों के लिए, स्किन के लिए, नाखून के लिए, बोन्स डेवलपमेंट के लिए। तो जिंक बहुत अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट है, यानी कि अगर ये मौजूद है ये बाकी तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके तो अपना एक स्ट्रक्चर जो है वो बना देगा। तो इसलिए
अच्छा
अगर देखें तो जो हमें मल्टी विटामिन्स की प्रेपरेशन
जी जी
देखते
जी
हैं
जी
तो वहाँ पे जहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको जिंक ज़रूर
जरूर। अच्छा
नज़र
डॉक्टर
आएगा।
साहब, आपने बात की थी कि प्रेगनेंसी में जब ख़वातीन हामला होती हैं तो उसमें भी जिंक की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, तो उसके बारे में बताएं।
जी बिल्कुल। देखें प्रेगनेंसी में भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होना ज़रूरी है। अब अगर जिंक नहीं है तो हम रिपोर्टेड है प्रीमेच्योर बर्थ की और अबॉर्शंस की भी। आप जो मैंने जैसे बताया था कि जिंक जो है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो हमारे खलिए हैं और बेसिक खलिया जो है डीएनए और आरएनए उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसी तरह जीन एक्सप्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर औरत की माँ के जिस्म में नॉर्मल क्वांटिटी है जिंक की तो ये नॉर्मल तरीके से जो है प्रोसीजर हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो बहुत सी चांसेस हैं कि प्रीमेच्योर बर्थ हो या अबॉर्शन हो जाए। जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है अडल्ट के अंदर मर्द और औरतों में वो तकरीबन 8 से 11 मिलीग्राम है, और बच्चों में पैदाइश से लेके 1 साल के बच्चे में इसकी तादाद तकरीबन 11 मिलीग्राम है, सॉरी 3 मिलीग्राम है। और जो अगर आप सप्लीमेंटेशन लेते हैं तो सप्लीमेंटेशन में जो रिक्वायर्ड है वो तकरीबन 11 मिलीग्राम% डेली वैल्यू है। तो ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं तरीके से किसी सोर्स से, अगर आप समझते हैं आपकी डाइट में नहीं है तो सप्लीमेंटेशन
सप्लीमेंट्री
लेके
है।
तो प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं वो अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन तमाम चीज़ों को देखें कि हम कोई डेफिशिएंसी ना रहे।
तो इसमें भी अगर डॉक्टर ने नहीं उन्हें जो है दिया है, प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो उन्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए ना, खुद से ले सकते हैं?
देखिए हम जब जर्नली जब गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि मदर अपनी खून को कमी ना होने दे और खाना अच्छा खाए,
जी
साफ़ सुथरा और बेहतरीन खाए। अगर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेंटेन रखती हैं, इंडिकेटर्स हैं ना कि खून की कमी होगी तो पता चल जाता है कि फूड नहीं ठीक है, तो अगर वो खाना खुराक वगैरह सब ठीक लेती हैं तो हमें पूरा श्योर होता है कि भाई जो है प्रेगनेंसी भी ठीक रहेगी।
अच्छा, इसके अलावा जो है और डिफिशियंसी की वजह से और क्या, आपने बच्चों में कितने चांसेस होते हैं कि इसकी डिफिशियंसी हो जाए?
बच्चों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया आपको नज़र आएगी वो बच्चों की स्किन और उसके जो है आपको फटी हुई स्किन नज़र आएगी
अच्छा
हाथों में, स्पेशली जैसे वो पेंसिल से काम
जी
करेंगे
जी
तो
जी
आपको ब्रूज्ड जैसा फिंगर टिप्स हैं,
अच्छा
और मुंह बहुत जल्दी फटेगा उनका, यानी कि होंठ बार बार फटेंगे,
अच्छा
आप नाक का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा रेड और फटना जैसा स्किन फट
हाँ
जाती है,
हाँ हाँ
डर्माटाइटिस है, और फिर बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों में गिरना शुरू हो
हाँ
जाएंगे,
जो कि नहीं होने चाहिए
नहीं
बच्चों
होने
में।
चाहिए, नाखून जो हैं बहुत वीक होंगे, बेंड होंगे, और नाखून बहुत आराम से कागज़ की तरह टूटना शुरू हो जाएंगे। तो ये अलामत हैं अगर बच्चों में इस तरह से आ रही हैं तो मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ौरन अपने बच्चे को जो है बेहतरीन उसकी ग़ुज़ा को बेहतर करें और कोशिश करें कि उसको ग़ुज़ा से बेहतर करें बजाय कि उसको किसी सप्लीमेंटेशन पर लगाएं।
अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में ये आया था कि अगर आपने कहा कि जैसे गोश्त, मछली और मुर्ग, इन सब चीज़ों में जो है जिंक पाया जाता है, और सब्जियों में कुछ ऐसा होता है कि वो जिंक की अब्जॉर्प्शन को कम कर देते, तो
जी
अगर कोई जो है वेजिटेरियन हो और वो सिर्फ सब्जियां खाता हो, वो गोश्त ना खाता हो, तो उसकी में कमी हो सकती है?
देखिए, मैंने आपको जैसे बताया था कि गोश्त के अलावा सी फूड भी है और सीड्स भी हैं,
जी जी
मतलब
जी
होल
जी जी
सीड है, गंदम है,
गंदम तो खा ले रही है,
कद्दू के
रोटी
बीज
तो
हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, और ये जो है बेहतरीन है, इनका रेजरवायर है जो, फिर इसके अलावा और बहुत सी ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सब में जो है ये जिंक मौजूद है। तो अगर कोई बंदा गोश्त नहीं खाता तो उसके पास ऑप्शन है ड्राई फ्रूट्स का, तो ड्राई फ्रूट्स जो हैं हेल्दी सोर्स हैं फॉर ऑल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स।
और किस एज ग्रुप में ज़्यादा खतरा होता है जिंक कम हो जाने का?
अच्छा, जिंक जो है दो एज ग्रुप बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक प्रेगनेंसी में और एक जब
अच्छा,
बच्चे की
पैदा होते
पैदाइश
हैं।
होती है। प्रेगनेंसी में क्योंकि मदर की अपनी बॉडी में एक और बेबी डेवलप कर रहा है, एक बच्चा बन रहा है, तो माँ की इबादत भी पूरी होना ज़रूरी है, और बच्चे जो नया बच्चे की पैदाइश के लिए भी उसके पास इतना हो कि वो जो है बच्चे के नॉर्मल ग्रोथ के लिए हो, और जो अर्ली एज में जो बच्चा नया पैदा होता है उसके लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये भी कि एक मतलब पैदाइशी तौर पे तो कहीं उसको जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं
अच्छा
है, तो वो भी विद इन 1-2 महीने के अंदर अंदर मालूम हो जाता है अगर कोई स्किन का फटना आ रहा है, बच्चे को बार बार डायरिया हो रहा है, बच्चे को बार
अच्छा
बार बीमार हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, और उसको रेस्पायरेटरी सांस की कोई इन्फेक्शन आ
अच्छा
रही है बार बार, तो एन मुमकिन है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्लिनिकली डायग्नोसिस जो है वो हम इस डायरिया पे होते हैं, अगर बहुत रिकरेंट डायरिया आ रहा है और स्किन ख़राब हो रही है
तो
तो
फिर
वो
चेक करो।
फिर कंफर्म करता है कि इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट कोई डेफिशिएंसी है या जिंक की कोई कमी है।
अच्छा, एक सवाल यहाँ पर आया है, सारा जहरा पूछती हैं कश्मीर से, ये लिखती हैं कि इनके बाल बहुत हल्के हैं, तो क्या ये जो है जिंक का सप्लीमेंट लेना शुरू करें?
बिल्कुल, अगर इनके बाल हल्के हैं तो ये मल्टी विटामिन्स ले सकती हैं और उसमें उनको जिंक भी मिल जाएगा, और बेहतरीन यही है कि वो अपनी खुराक का, अगर उनकी खुराक कमी है, बेहतरीन चीज़ यही है कि ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लें, अंडे और मीट का इस्तेमाल, सी फूड का इस्तेमाल करें, और अगर खुराक से सी फूड और इनसे बेहतर नहीं हो तो फिर सप्लीमेंटेशन की तरफ जाएं।
अच्छा, और डिफिशियंसी आपने जैसे बताया बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जहन की, ब्रेन में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसमें क्या
देखिए,
डिफिशियंसी?
ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर जिस तरह मैंने बताया कि हीमोस्टेसिस और कॉग्निशन, यानी कि आप कितना नॉर्मली तरीके से चीज़ों को कॉग्निट कर रहे हैं, तो
अच्छा
इसमें भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी मतलब जिंक आपके पास नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर हो, लेकिन चूंकि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आराम से आपको
हर जगह
आपकी
मिल जाता
मिल
है।
जाता है, तो हमें कोई इसकी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की डिफिशियंसी नहीं मिलती, एक्सेप्ट किसी को जेनेटिकली या पैदाइशी तौर पर कोई कमी आ जाए तो। और इसकी इतना ये अच्छी इनक्रेडिबल चीज़ है कि फ़ौरन बॉडी जो है जहाँ भी थोड़ा सा भी किसी फूड में है तो उसको फ़ौरन एब्जॉर्ब कर लेता है।
डॉक्टर मदिया, मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी, सप्लीमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि सप्लीमेंट्स कैसे लिए जाते हैं, किस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, हम खुद से खा सकते हैं, क्या चक्कर है इसका?
जी बिल्कुल, जिंक सप्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है बाहर, हर चीज़ जो कि अगर आप शैम्पू देखें तो शैम्पू में जिंक पारी थॉर्न की कॉम्बिनेशन के साथ है और वो डैंड्रफ के लिए खुश खुश्की जो बालों में हो
अच्छा
जाती है, तो आपका एक रूटीन शैम्पू जो है जिंक सप्लीमेंटेड है अगर किसी को डैंड्रफ है। फिर डायरिया की बहुत सी प्रेपरेशन है जिनको बच्चों को, स्पेशली बच्चों में मैंने जैसे बताया कि चूंकि बच्चे नट्स नहीं खा सकते
जी
हैं,
जी
गोश्त नहीं खाना पसंद करते हैं, तो कई ऐसी चीज़ें हैं कि वो जिंक बेस्ड चीज़ें नहीं खाते हैं तो
कमी होने के चांसेस
फिर
होते हैं।
डायरिया हो जाता है।
जी
फिर उनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं वो जिंक सप्लीमेंटेड सीरप होते हैं। पर इसी तरह अगर आप देखें बच्चों में ही भी और बड़ों में भी
जी
रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, सांस की इन्फेक्शंस आ जाते हैं या कुत्ते मुदाफ़त कम होती है, नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है, फिर
अच्छा
उसके लिए जिंक लोजेंजेस हैं यानी कि टॉफ़ी की तरह वो होती हैं टैबलेट्स होती हैं जिनको आप
अच्छा
चूसते हैं, और मतलब जिंक आप इस तरह से लेते
यानी
हैं।
अगर किसी बच्चे को नज़ला बार बार हो रहा है तो वो जिंक भी अपने चेक करवा ले उसके वालदैन।
प्रिकॉशनरी मतलब अगर आप उसको अच्छी खुराक दे दें तो बेहतर है, क्योंकि मतलब जिंक माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है मैंने जैसे बताया, इसके
जी
अलामत बहुत ज़्यादा नुमायाँ नहीं होते
अच्छा
और एक नॉर्मल बच्चे में नहीं होते, लेकिन चूंकि कई चीज़ें हैं जैसे रूटीन में हम ले रहे हैं, आपके पास शैम्पू है, आपके पास जिंक लॉजेंजेस हैं, इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अंटिल किसी को अगर किसी को वाकई में डायरिया हो गया है तो फिर उसमें ट्रीटमेंट जो है जैसे जिंक लॉजेंजेस
अच्छा
सॉरी जिंक सीरप की ज़रूरत है।
अच्छा
फिर अगर आप देखें नैपी रैश बच्चों में, जो
जी
छोटे
जी जी
बच्चे होते
जी
हैं डायपर रैश नैपी रैश हो जाता है, उसमें फिर जिंक क्रीम है और वो बहुत
अच्छा
बेहतरीन है। मतलब आपकी आम रूटीन की जो नैपी रैश है उससे हट के जिंक बेस्ड नैपी रैश क्रीम जो है वो बहुत ही
यानी
बेहतरीन
स्किन
है।
के लिए, हमारे खाल के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है
हाँ जी
जिंक।
बिल्कुल, तो ये एक ये सप्लीमेंट्स हैं। फिर जिंक चीलेटेड जिंक जो है वो टूथपेस्ट और माउथ वॉशेस में भी हैं, जैसे कि जिन लोगों के मुंह में बैड ब्रेथ आ जाती है,
जी
सांस में
बदबू
स्मेल
आती है।
आती है,
जी
बदबू आती है, तो उसमें भी जो है जिंक सप्लीमेंटेशन है। तो मतलब जिंक की ऑप्शन हमारी प्रोडक्ट्स में और कॉस्मेटिक्स में, इन तमाम चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली उन्होंने ऐड किया हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने।
तो ऐसे देखा जा सकता है, अगर मसलन किसी शैम्पू में पाया जाता है या किसी क्रीम में पाया जाता है तो हो सकता है वो अच्छी चीज़ हो, ये नहीं कह सकते। यानी लेकिन अगर जिंक हो तो बेहतर है उस चीज़ में।
ये नहीं कह सकते कि
हाँ वो
मतलब
अच्छा है, सही बात
हाँ,
है।
क्योंकि डिपेंड करता है कि वो किस लिए
हाँ
मेडिसिनल
बेहतर है
है,
कि उसमें जिंक हो।
मेडिसिनल है या नॉन मेडिसिनल है।
अच्छा, और खाने में तो आपने बताया कि हम जो है गोश्त वगैरह ये सब चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है हमारा, खुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान में गोश्त वगैरह को बहुत भूना जाता है, यानी उसमें से बिल्कुल भू निकल जाता है, तो भूनने से क्या उसके न्यूट्रिएंट्स और उसमें कुछ कमी आती है या नहीं, इतना असर नहीं पड़ता है उसका।
जिंक चूंकि एक एलिमेंट है और हीट स्टेबल है,
अच्छा
हीट स्टेबल है, विटामिन्स की तरह वॉलेटाइल नहीं है। विटामिन जैसे हमें ए बी सी देखते हैं विटामिन्स हैं, वो कुकिंग से ओवर कुकिंग से ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं एलिमेंट हैं जितने भी आयरन हैं जिंक हैं, तो ये उनके मुकाबले में ये कंपैरेटिवली स्टेबल हैं, तो ये इतनी आराम से इतनी जल्दी से नहीं निकलते
अच्छा
हैं।
आमतौर पर जो बीमारियां होती हैं और जो कमियां होती हैं वो ख्वातीन में ज़्यादा हो जाती हैं विटामिन हर चीज़ की, तो जिंक में भी क्या ऐसा होता है कि मर्दों को अगर उनको कंपेयर किया जाए ख्वातीन को, तो ख्वातीन में ज़्यादा होती है या नहीं, किसी को भी हो सकती है
देखिए
गोश्त वगैरह?
रेंज है 8 to 11 मिलीग्राम जो है रिकमेंडेड डेली अलाउंस। तो इस रेंज में फीमेल अपने, क्योंकि अपनी लाइफ साइकिल जो उसका है, उसका हार्मोनल साइकिल, और उस अगर वो प्रेगनेंसी में जा रही है उसमें फीमेल उतार चढ़ाव में जाती हैं, जबकि मर्दों में जो मतलब अगर कोई किसी को रिप्रोडक्टिव इश्यू है उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिंक मैक्सिमम प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर
जी
है, तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, तो अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो जिंक उनके लिए बेहतर है। तो ये डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल, अडल्ट
जी
मेल
जी जी
मर्द और औरत जो हैं अपनी लाइफ साइकिल के किस हिस्से में हैं।
टेस्ट जो हम लोग रूटीन टेस्टिंग कराते हैं 6 महीने पे या 1 साल पे, उसमें इसका टेस्ट हमें कराना चाहिए या नहीं, और इससे बचे कैसे जिंक की कमी से?
अच्छा, जो इसके डायग्नोस्टिक्स रूटीन नहीं है, हम सेकेंडरी टेस्ट जैसे कि हम कहते हैं खून की कमी है, तो खून की कमी हमें बता देती है कि इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी हो सकती है, और जो बुनियादी चीज़ है वो क्लिनिशियन के ऊपर है कि अगर क्लिनिश डॉक्टर समझता है कि इसको कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक्रोडर्माटाइटिस
जी
एंटीरोपैथिका
जी
का
जी
अगर सस्पेक्ट कर रहा है, तब फिर ख़ास तौर पर उसमें टेस्ट करेंगे, लेकिन रूटीन में इसका टेस्ट नहीं, क्योंकि वो भी डिजीज़ जो है वो रेयर है। और प्रिवेंशन बेस्ट डाइट, अगर आपकी खुराक बैलेंस है, गोश्त है, फल है, ड्राई फ्रूट्स हैं आपकी खुराक के अंदर, तो इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप देखते हैं कि वो खुराक से नहीं बैलेंस हो रहा, देन फिर आप जो है के ऊपर चले जाएं।
अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 मिनट होगा, यहाँ पे एक और वो आ जाती है कि ऐसा ना हो कि गोश्त खाने वाले फिर वो कहें कि अब सब सब्जियाँ छोड़ दो, क्योंकि सब्जियों में जो है जिंक अब्जॉर्ब नहीं होती है,
नहीं, मैंने आपको बताया है कि
बैलेंस्ड है सब कुछ।
ना, अगर आप सब्जी की अपने बहुत से फायदे हैं, सब्जी के इंतहा के फायदे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब्जी अगर उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर रहा है, उसका इंट्रैक्शन है, फूड इंट्रैक्शन है, हम इसको टेक्निकली फूड इंट्रैक्शन कहते हैं, फूड इंट्रैक्शन है, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आपने सारा दिन तो सब्जी नहीं खानी है।
सही
मे बी
बात
आप
है,
जब नट्स खा रहे हैं शाम की चाय के साथ, तो उस वक्त सब्जी तो नहीं है आपकी
सही बात
टेबल पे, तो वो आपका मैक्सिमम चांस है उस वक्त एब्जॉर्प्शन का।
है। यानी आप बैलेंस डाइट खाएं, उसमें
हाँ
गोश्त भी हो,
जरूर,
उसमें सब्जियां भी हो, सब कुछ हो।
बिल्कुल बिल्कुल।